नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत आज टर्की का परिचय नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। टर्की का परिचय एशिया के पश्चिमी भूखंड में स्थित देशों को पश्चिमी एशिया के नाम से पुकारा जाने जाने लगा है। पाश्चात्य देशों ने यूरोप से दूरी के हिसाब से इस क्षेत्र को निकट पूर्व अथवा मध्य पूर्व नाम दिया था, परंतु एशिया की दृष्टि से इस क्षेत्र का पश्चिमी भी मानकर इसे पश्चिमी एशिया का आधुनिक नाम भारतीय तथा एशियाई इतिहासकारों ने दिया है। यह क्षेत्र पांच महासमुद्रों के तट पर स्थित है एवं भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर और ईरान की खाड़ी से घिरा है। भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र में टर्की, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल एवं विशाल अरब क्षेत्र आता है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से मिस्र, सूडान एवं साइप्रस को भी इस क्षेत्र से अभिन्न संबंध रहा है और अफगानिस्तान भी धीरे धीरे इसी क्षेत्र में सन्निहित होता जा रहा है। इन सभी देशों का क्षेत्रफल प्रायः 36 लाख वर्ग मील है और जनसंख्या 14 करोड़ से ऊपर है। इसमें विशुद्ध पश्चिमी एशिया का क्षेत्रफल 27 लाख वर्ग मील है और जनसंख्या 14 करोड़ है। इस क्षेत्र के बहुसंख्यक निवासी इस्लाम के अनुयायी हैं, परंतु ईसाई, यहूदी आदि भी काफ़ी संख्या में हैं। आधुनिक युग में यह क्षेत्र मुख्यतः विशाल तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का अंग था, परंतु महायुद्ध के पश्चात इनमें से अधिकांश स्वतंत्र हो गए। इस क्षेत्र में तेल के उत्पादन एवं व्यावसायिक विकास के कारण आधुनिक युग में इसका महत्व काफी बढ़ गया है। भौगोलिक स्थिति। टर्की एशिया और यूरोप के संगम पर बसा हुआ यूरेशिया का कटी प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 2,96,500 वर्ग मील है, जिसका 3% यूरोप के थ्रेस प्रदेश में है। टर्की के पड़ोसी देश ग्रीस, बल्गेरिया, रूस, इराक, सीरिया तथा ईरान है। इसके उत्तर में काला सागर और वास्पोरस की खाड़ी, दक्षिण में इराक और सीरिया, पूर्व में सोवियत रूस और ईरान तथा पश्चिम में ईजियन सागर है। देश का अधिकांश भाग चारागाह है तथा 20% क्षेत्र में ही कृषि होती है। कृषि के लिए अदना और अनातोलिया की समतल भूमि काफी उर्वर है। फुरात और किजिल इरमक नामक दो प्रसिद्ध नदियों से उपज को काफी मदद पहुंचती है। यहाँ का अधिकांश भाग प्लेटो अथवा जंगल है। केंद्रीय अनातोलिया का प्लेटो काफी प्रसिद्ध है। यहाँ औसत वर्षा कम होती है, अतः यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन है और 50% भूमि चारागाह है। एशिया और यूरोप का संगम स्थान होने से टर्की ने अनेक साम्राज्यों को उदित एवं नष्ट होते देखा है। यहाँ की 3 करोड़ के लगभग आबादी में विभिन्न जातियों का मिश्रण है। यहाँ ईसाई, यहूदी, तुर्क, अरब आदि जातियाँ ही मुख्यतः निवास करती हैं। ये सब जातियाँ टर्की के ऐतिहासिक विकास क्रम में यहाँ प्रविष्ट हुई और यहाँ की जनसंख्या का अभिन्न अंग बन गई। आधुनिक युग के पूर्व टर्की एक विशाल साम्राज्य तथा इस्लाम की खिलाफत का केंद्र था। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण टर्की में कई सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का सम्मिलन हुआ तथा वर्तमान टर्की का स्वरूप उनके उत्थान पतन के बाद निर्मित हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। टर्की का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं गौरवमय रहा है। वर्तमान टर्की के स्थान पर ही होमर के समय ट्रॉय का प्रसिद्ध नगर था, जिसके साथ यूनान का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तत्पश्चात हिटाइट साम्राज्य का केंद्र यहीं पर स्थापित हुआ और बाद में अनेक साम्राज्यों का उदय और विनाश हुआ। अतः यह प्रदेश रोमन साम्राज्य का अंग बन गया। प्रख्यात रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया नामक प्रसिद्ध शहर बसाया, जो पूर्वी साम्राज्य का बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी बनी। 476 ईस्वी में रोम का पतन हो गया, परंतु पूर्वी रोमन साम्राज्य अक्षुण्य बना रहा तथा इसकी समृद्धि भी बनी रही। पूर्वी रोमन साम्राज्य की सुव्यवस्था के कारण एशिया और यूरोप का आर्थिक एवं राजनीतिक संपर्क कायम रहा तथा इस विशाल साम्राज्य की छत्रछाया में एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप अनेक देश बने रहे। परंतु 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने महमूद द्वितीय के नेतृत्व में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य का सदा के लिए अंत कर दिया। यहीं से ही टर्की का नया इतिहास आरंभ हुआ तथा वर्तमान टर्की का नामकरण इन्हीं तुर्कों के शासनकाल में हुआ। धन्यवाद।